यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्ताय गौरांग नित्ताय गौरांग नित्ताय गौरांग नित्ताय गौरांग बोलो गौरा हरि हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे जय राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधे जय राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधे జయ జగన్నాథ జయ జగన్నాథ బలదేవ జయ శోభదా নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল জয় জয় প্রভুপাদ 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 জয় জয় প্রভুপাদ 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 প্রভুপাদ
గౌరప్రేమానందే జగం విష్ణు భార్ పరమంశ పరిభ్రాజకాచార్య జ్యేష్ఠోత్తర శత శ్రీ శ్రీమశ్రీ అభయ చరణ బింద భక్తి విధాన స్వామి శ్రీ భూపాది కి జయ ఇస్కాన్ బ్యూటీ ఫౌండర్ రచన శ్రీ భూపాద్ కి జయ గ్రంథరాజ శ్రీమద్ భాగవతం కి జయ జయ నితాయ గౌరప్రేమానందే హరి హరి బోల్ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమ భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమ భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమ భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమ భగవతే వాసుదేవాయ గ్రంథరాజ శ్రీమద్ భాగవతం స్కంధ 9 అధ్యాయ 7 శ్లోక సంఖ్య 20 9720 ఇస్కా పహలే 8 నంబర్ శ్లోక సే 19 తక్ కోయి తాత్పర్య నహీ హై జిస్కే లియే 20 నంబర్ శ్లోక కా ఆజ్ హమ్ లోగ్ అధ్యయన్ కరేంగే షష్టం సంవత్సరం తత్ర చోరిత రోహిత పూరిం ఉప వ్రజ ఉపవ్రన్నజీ ఉపవ్రజన్ అజియగత్తాత్ అక్రినాత్ మధ్యమం శూతం శునశేఫం పోషుం పిత్రే ప్రదాయ శమబంధత షష్టం సంవత్సరం తత్ర చోరిత్ర రోహిత పూరిం ఉపవ్రజన్ అజిగత్తాత్ అక్రిన్నాత్ మధ్యమం శూతం శునశేఫం పశుం పిత్రే ప్రదాయ శమబంధత షష్టం సంవత్సరం తత్ర షష్టం సంవత్సరం తత్ర చోరిత్రారోహిత పురిం ఉపవ్రజం అజిగర్తాన్ అక్రిన్యాత్ మధ్యమం శుతం శూనశేపం పశుం పిత్రే ప్రోదాయ శమబంధత షష్టం సంవత్సర షష్ట సంవత్సరం తత్ర చోరిత్రారోహిత పురిం ఉపవ్రజం అజిగర్తా अकृण्यात्मध्यमं श्रुतं शूनशेपं पशुं पित्रे क्रोधाय समबन्धत षष्ठं संवत्सरं तत्र चोरिता रोहिता पुरीं उपव्रजन् अजीगर्ता अक्तिन्यात्मध्यमं श्रुतं शूरशेपं पशुं पित्रे क्रोधाय समबन्धत षष्ठं संवत्सरं तत्र चोरित्वा रोहिता पुरीं उपव्रजम् अजीगर्ता अक्किनात्मध्यमं श्रुतं शूनशेपं पशुं पित्रे क्रोधाय समबन्धत शब्दार्थ षष्ठम छठवे षद्वत्सरम वर्ष तत्र उस जंगल में चोरित्रा घूमकर रोहिता हरिश्चंद्र का पुत्र पूरीम अपनी राजधानी में उपव्रजन या आकर अजीगर्ता अजीगर्त से अक्रीनात मिल लिया मध्यमम दूसरा शूतम पुत्र शूनशेफम जिसका नाम शूनशेफ था पशुम बलि पशु के रूप में पित्रे अपने पिता को प्रोदाय देते हुए समबंधत सादर नमस्कार किया। शिलोपोपाद द्वारा अनुवाद तथा तात्पर्य शिलोपोपाद की जय। तत्पश्चात छठे वर्ष जंगल में घूमने के बाद रहित अपने पिता की राजधानी में लौट आया। उसने अजिगत से उसके दूसरे पुत्र शून शेव को भोल लिया, फिर उसे लाकर आपने पिता हरिश्चंद्र के भेंट किया, जिससे वो बलि पशु के रूप में प्रज्वलित किया जा सके। उसने हरिश्चंद्र की सादर नमस्कार किए। शिलोपोपाध्याय तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों मनुष्य को किसी भी कार्य के लिए खरीदा जा सकता था। हरिश्चंद्र के ऐसे व्यक्ति को खोज थी जिसकी बलि यज्ञ में पशु के रूप में दो जा सके, और इस तरह वरुण के दिया गया वचन पूरा किया जा सके। इसके लिए अन्य व्यक्ति से एक मनुष्य खरीदा गया। लाखों वर्ष पशु बलि तथा दास व्यापार दोनों प्रचलित थे। वास्तव में ये अत्यंत अनंत काल से चले आ रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्वेतं सदाशापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं शक्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं शाद्वैतं सावधूतं पुरीजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देश तारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विशोभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम गढ़तिवाचलम पंगुम लंगयते गिरिम जत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। जिस अध्याय का परिचर्चा चल रही है, इस अध्याय का नाम है मांधाता का वंशवज। एक्चुअली इस अध्याय में पूरा मांधाता परिवार का विश्लेषण किए हैं शुक्ल गोस्वामी पाद। इसके ऊपर श्री प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, द फैमिली बैकग्राउंड ऑफ द मांधाता फैमिली वॉज ड्यूअल। मतलब इसका अर्थ होता है कि मांधाता परिवार, राजा मांधाता का पूरा परिवार साधु संत के द्वारा जिस तरीका से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त की थी, तत्पश्चात श्राप भी मिली थी। द फैमिली बैकग्राउंड वॉज ड्यूअल बाई द कर्स एंड सिमल्टेनियसली ब्लेसिंग्स बाई द सेजेस। श्री प्रभुपाद जी इस अध्याय का ऊपर एक जगह में एक सेंटेंस लिखे है कि मांधाता परिवार पूरा ये जो बैकग्राउंड जो पश्चातपद है उसमें है कि साधु संत के द्वारा आशीर्वाद तथा साधु संत के द्वारा श्राप। जैसा कि इसका हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हरिश्चंद्र के ऊपर, हरिश्चंद्र इनका कोई पुत्र वगैरह कुछ भी नहीं थे। इन्होंने नारद मुनि का उपदेश लेकर वरुण देव के पास पहुंच गए थे। वरुण देव को जाके बताया कि ये वरुण देव मेरा जीवन में सबसे बड़ा दुख है। तब वरुण देव ने पूछने लगे कि क्या दुख है आपका जीवन में, आपने तो सब कुछ प्राप्त कर लिए हो, ऐसा कोई ऐश्वर्य नहीं है जो आपको पास नहीं है। तो हरिश्चंद्र ने पूछने लगे, ये तो आपने सही बात बताए, लेकिन मेरा जीवन में जो है मेरा एक ही दुख है। बोले कौन सा दुख है? बोले जिसके द्वारा मैं आपने को सहन नहीं कर पाता हूं कभी कभी। तो वरुण देव ने पूछने लगे, क्या दुख है आपका जीवन में? बोले मेरा जीवन में हर चीज मैंने प्राप्त किया हूं, ऐसा कोई ऐश्वर्य नहीं है जो मेरे पास नहीं थे, लेकिन मेरा जीवन में कोई संतान नहीं है। जिस माता पिता का घर में कोई संतान नहीं रहते हैं, उनको पता होता है कि संतान का महत्व तो क्या है। इसके ऊपर प्रभुपाद जी बताते हैं, बंधा की जाने प्रसवेरो वेदना, बंधा की जाने प्रसवेरो वेदना, इस बंगाली कोटेशन है। इसको श्री प्रभुपाद जी बहुत सारे प्रवचन में इसका वर्णन किया है कि बंधा की जाने प्रसवेरो वेदना, मतलब जो कि बंधा नारी जिसको कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकते, उनको पता नहीं होता है कि प्रसव यंत्रणा लेबर पेन किसको बोलते हैं। तो हर माता पिता का जीवन में एक दुख रहता है, अगर उनका पुत्र नहीं है तो कोई संतान नहीं है। तो हरिश्चंद्र के पास सब कुछ थे लेकिन कोई संतान नहीं है, और इस दुख का कारण नारद मुनि ने उनको उपदेश दिया कि आपका जीवन में आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया हो। इसका बैकग्राउंड में बताते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने ऐसा कुछ सब प्राप्त किए थे मुनि ऋषियों के द्वारा, जिसके लिए उसका जीवन में सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी कोई संतान उन्हें प्राप्त नहीं कर पाए। इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं, द बैकग्राउंड ऑफ द मंदत फैमिली वॉज ड्यूअल, मतलब द्वैतवाद उनके ऊपर, इसका फैमिली में संत महात्मा का जिस तरीका से आशीर्वाद है उस तरीका से उन्होंने अभिशाप भी प्राप्त किए थे। जैसे कि राजा हरिश्चंद्र, उन्होंने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर ली थी लेकिन जीवन में उनका कोई संतान संतति नहीं थी, जिसके लिए जीवन में दुख था। इस दुख का कारण वशत नारद मुनि ने उनको उपदेश दी कि जाओ आप वरुण के पास जाओ, जा कुछ मांगो कुछ आपने। तो नारद मुनि का उपदेश सुनकर हरिश्चंद्र ने पहुंच गए थे वरुण देव के पास। तो वरुण देव ने उनको पूछने लगे कि आपका जीवन में क्या दुख है? तो उन्होंने बताया कि मेरा जीवन में एक ही दुख है कि मेरा पास कोई संतान नहीं है। माता पिता का जीवन में सबसे बड़ा दुख मिलते हैं जब उनका पास कोई संतान नहीं रहते। उस जमाने में तो ऐसा नहीं था कि टेस्ट ट्यूब बेबी कोई ले सकते हैं, लेकिन आज के जीवन में ऐसा हो गया कि यही से बहुत सारे माता बहुत सारे परिवार है जो कि चाहता है कि जीवन में से आनंद ही प्राप्त कर ले, बच्चा लेने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं वो लेना नहीं चाहते हैं। अब ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिन्होंने बहुत प्रयास किए लेकिन कोई संतान नहीं है। तब पहुंच जाते हैं कोई अनाथ आश्रम ऑर्फेंज आश्रम में, जाकर एक बाहर का कोई बच्चा को लेकर अपना पालते रहते हैं। फिर भी जय श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो राजा हरिश्चंद्र का क्यों जीवन में दुख प्राप्त हुए थे, इस फैमिली बैकग्राउंड में बताते हैं कि राजा हरिश्चंद्र, इनका पिताजी का नाम था क्या, त्रिशंकु, जिनका नाम है सत्यव्रत। तो त्रिशंकु ने जब बचपना थी, मतलब जब यंग एज, तो यंग एज में उन्होंने एक ब्राह्मण कन्या को छुपा कर लेकर गए थे जिसके लिए उनको श्राप मिला था, और उसी घर में राजा हरिश्चंद्र आए, जिनके लिए जीवन में सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी कुछ संतान नहीं था। तब वरुण देव के पास जाकर जिन्होंने उन्हें दया मांगे, तब वरुण देव इतना कृपालु कि कहने लगे, ठीक है तथास्तु, ठीक है आपने पुत्र मांग रहे हैं ना, तो आपको पुत्र जरूर मिल जाएंगे। तो राजा हरिश्चंद्र ने एक वादा किए थे, प्रॉमिस किए थे वरुण देव के सामने, ये अगर मेरा पुत्र हो जाए तो आपका सामने मैंने बहुत बड़ा करके बड़ा धूमधाम से मैंने एक यज्ञ वगैरह अनुष्ठान करूंगा। मैं नियम का हिसाब से वरुण देव का कृपा के द्वारा राजा हरिश्चंद्र ने एक पुत्र संतान प्रसव की उनका धर्मपत्नी। जिस पुत्र संतान का नाम है रोहित। तो रोहित हो जाने के बाद वरुण देव ने आके पूछने लगे कि हरिश्चंद्र, आपने तो बताया था कि आपको बड़ा धूमधाम से पुत्र संतान होने के बाद अपने बड़ा धूमधाम से यज्ञ वगैरह करोगे, तो अभी तो आपका समय हो गया, अब यज्ञों का कार्यक्रम चालू कर दो। तो राजा हरिश्चंद्र पुत्र का ऊपर आसक्ति का कारण हर तरीका से उनको बहाना बनाना चालू कर दिया। कहने लगी कि ये बच्चा है, अभी यज्ञों में बैठने के लिए इसका समय नहीं हुए। बाद में कहने लगी ठीक है, इसको अभी तक दांत नहीं निकाले हैं। बाद में कहने लगी कि दांत निकला, लेकिन ये दांत उगड़ जाने के बाद फिर नया दांत निकालते हैं। इस तरीके से उन्होंने बहाना बनाना चालू किए। इसी तरीके से करते करते एक दिन रोहित बड़ा हो गए। रोहित जब बड़ा हो गए तब सुन लिए कि अपना पिताजी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। तब उन्होंने एक धनुर्बाण को लेकर वन में चला गए। इंद्र ने उनको निर्देश दी कि आप वन में जाओ। तब वन में चला गए उन्होंने। जब वन में चला गए थे तब वरुण देव ने क्रोधित होकर राजा हरिश्चंद्र को साथ दे दिए। इसके लिए प्रभुपाद जी पहले ही बताए कि द बैकग्राउंड ऑफ द मंदाता फैमिली दो तरीके से हुए, साधु संत का आशीर्वाद भी प्राप्त किए और साथ साथ श्राप भी प्राप्त किए थे। जिन्होंने उन्होंने जो वादा किए थे राजा हरिश्चंद्र वरुण का सामने, तो वादा को पूरा नहीं कर पाए, पूर्ण आसक्ति का कारण उन्होंने छोड़ दिए थे। तो पुत्र रोहित ने चला गए थे वन में कि उनको पता हो गए थे कि मेरा पिताजी का क्या सलाह है। तो चला गए थे वन में। वन में जाने के बाद उन्होंने सोचने लगे कि मेरा पिताजी ने वचन दिए थे वरुण देव के सामने, मेरे को अभी आना चाहिए। छह साल तक, जिसके लिए कहते कि षष्ठ वत्सरो तत्र, वन में जाकर छह साल तक उन्होंने अपना जीवन को बिताया। बाद में आकर दूसरा पुत्र को खरीद करके लिए, दूसरा एक महात्मा से खरीद कर उन्होंने यज्ञ में उनको दान दे दिए थे। और तब राजा हरिश्चंद्र वरुण देव के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होकर स्वर्ग लोक प्राप्त के सिद्धि लाभ प्राप्त किए थे। तो प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि राजा हरिश्चंद्र का चरित्र में दो तरीका सा है। एक तो पहले उन्होंने संत महात्मा के द्वारा अभिशाप प्राप्त हुए थे, जब वरुण देव को उन्होंने वचन दे दिए कि मेरा पुत्र होने के बाद मैं बड़ा धूमधाम से एक हवन वगैरह कर दूंगा, उसमें मैंने अपना पुत्र को मैंने समर्पित कर दूंगा इसमें। लेकिन पुत्र हो जाने के बाद पूर्ण आसक्ति के कारण अपना वचन को निभा नहीं पाए। तो वरुण देव ने क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिए कि आपको उदर रोग के द्वारा उदर रोग आपको प्राप्त हो जाएंगे। उदर रोग का अर्थ प्रभुपाद जी ने बताया कि उदर रोग उसको बोलते हैं जिसका पेट बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा पेट हो जाता है। और पेट का अंदर, प्रभु जी तो इधर बैठे हैं, प्रभु जी को पता होगा कि उदर रोग किसको बोलते हैं। उदर मतलब उदरी, इसलिए प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि राजा हरिश्चंद्र का उदरी रोग होते हैं। उदरी का अर्थ है ऊ का मतलब पानी, दड़ी मतलब अंदर, जिसका पेट का अंदर पानी रहता है उसको बोलते हैं कि उदरी रोग। शिल्पोपा जिसके वर्णन किया कि उदरी का अर्थ था जिसका पेट का अंदर पानी भरे हुए है, जिसको बोलते हैं कि उदरी रोग। तो राजा हरिश्चंद्र को उदरी रोग प्राप्त हो गए। अपना बेटा रोहित जब सुन लिए कि मेरा पिताजी का उदरी रोग प्राप्त हो गए, तब दूसरा से एक संतान को लिए, खरीद लिए उन्होंने। उस जमाने में प्रभुपा जी वर्णन किए तात्पर्य में कि दूसरे संतान को खरीद करना, कृतदास पोता, ऐसा बहुत सारे था। आज से 100-150 साल पहले भी एक विधि था, विधवा विवाह और श्रुतिदाह प्रथा। तो प्रभुपाद जी इसके ऊपर वर्णन करके श्रुतिदाह प्रथा, विधवा विवाह आज से 150 साल पहले भी था, 150-200 साल पहले भी। आज भी गांव गांव में आवड़ जाकर देखे, कुछ दिन पहले भी राजस्थान का एक मतलब गांव में जाकर वो श्रुतिदाह प्रथा चालू थी। इसके ऊपर बहुत हल्ला हो गए थे, पूरा हार्ड तरीके से न्यूज चैनल पूछ गए थे। बाद में ये श्रुतिदाह प्रथा ये विधवा विवाह चालू किए थे। ये सतीदाह प्रथा बंद हो गए बाद में। सतीदाह का अर्थ होता है पति अगर गुजर गए तो पति के साथ पत्नी को भी जलाना पड़ता था, इसको बोलता कि सतीदाह प्रथा। सतीदाह प्रथा आज का नहीं है, ये वैदिक युग से चालू हो गए थे। आज दूसरे किसी का संतान खरीद करना ये भी वैदिक युग से चालू था, जैसे आज का दुनिया में एक फैशन हो गए कि जिसका कोई संतान नहीं है तो पहुंच जाता है कोई ऑर्फेंज आश्रम में, अनाथ आश्रम जिसको बोलते हैं, अनाथ आश्रम में जाकर बच्चा को खरीद करके लेकर आते हैं और खरीद करके उसी बच्चा को पालते रहते हैं। क्योंकि बोपा जी वर्णन कर रहे कि हर मां बाप जो होता है पिता माता का मन में रहते हैं कि ये मां और बाप, माता और पिता, ये दो शब्दों को सुनने के लिए। अगर कोई माता को बच्चा नहीं है तो उनका जीवन में सबसे बड़ा दुख रहता है कि मैंने जिंदगी में सब कुछ मैंने प्राप्त कर लिया लेकिन एक शब्द मैंने कभी नहीं सुना हूं जिसका कथा है माता। 10 मास 10 दिन अपना घर में रखने के बाद, इतना कष्ट होने के बाद माता ने जो कर्म सुखी बनते हैं, जब उसी बच्चा भूमि में पतित होकर कहने लगे कि मां, इस मां शब्द को हार माता सुनना चाहते हैं। सिमुलटेनियसली तद्रूप हार पिता का भी मन में रहते हैं कि मैंने जो इतना मेहनत किया हूं सिर्फ एक ही कारण के लिए कि मैंने कुछ सुनना चाहता हूं कि मेरा बच्चा मेरे को कहे पिता। तो हर व्यक्ति का मन में रहते हैं, ये अगर नहीं सुन पाए तो जीवन में सबसे बड़ा दुख प्राप्त होती है। और जिस दुख का कारण राजा हरिश्चंद्र व्यतीत हो गए थे, व्यतीत होकर सोचने लगे कि मेरे को अभी क्या करना है। तो नारद मुनि हर जगह घूमते रहते हैं। नारद मुनि बाजाए बिना राधिका रमनो नाम है। तो नारद मुनि इसी तरीके से जब घूम रहे थे तब उन्होंने पूछ गए थे राजा हरिश्चंद्र के सामने। तो नारद मुनि ने सलाह दिए राजा हरिश्चंद्र की, जाओ आप जाके ऐसा करो। तो वरुण देव का कृपा से राजा हरिश्चंद्र ने पुत्र प्रसव किया, पुत्र आए उनका परिवार में जिनका नाम है रोहित। लेकिन उन्होंने वचन को निभा नहीं पाए, जिसके लिए वरुण देव क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिए थे कि आप उदरो गुस्त तहोविदार, तो आपको उदरी रोग प्राप्त हो गया। उदरी रोग का ऊपर प्रभुपाद जी वर्णन किए कि उनका पूरा शरीर में नहीं, उसका बहुत बड़ा पेट हो जाता है और पेट के अंदर से पानी 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 रहते हैं, दूसरा कुछ बीमारी नहीं है। और उसी पानी का कारण कभी भी उसको कुछ भी हो सकता है, जिसको बोलते हैं कि उदरी रोग। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस उदरी बीमारी जो है, इस उदरी रोग, इसका एक फैमिली बैकग्राउंड रहता है। इसका ऊपर कोई साधु संत का श्राप का कारण ये उदरी रोग को प्राप्त होता है। आज का दिन में भी अगर किसी को ये रोग प्राप्त हो गए तो कोई भी डॉक्टर को अगर दिखाए तो डॉक्टर पहले आपको पूछते हैं आपका हेरिडिटी, मतलब आपका पारंपरिक धारा में किसी को ये रोग था कि नहीं, ये डिजीज है कि नहीं, पहले वो पूछ लेते हैं। किसी को अगर बहुत बड़ा पेट हो गए, पेट के अंदर पूरा पानी, तो डॉक्टर के पास आप जाकर पूछिए तो डॉक्टर पहले आपको पूछेंगे, पहला क्वेश्चन गोपाल जी वर्णन कर रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कि वो पेशेंट को डॉक्टर पूछते हैं आपका फैमिली बैकग्राउंड बताओ। तो उन्होंने बताते कि मेरा परिवार में ये था ये था, मेरा चाचा, चाचा का बड़ा भाई ऐसा है, नाना नानी, सबको बताते हैं क्योंकि ये पारंपरिक धारा से उदरी रोग को प्राप्त होता है। हरिश्चंद्र का बेटा रोहित ने शंका हो गए कि मेरा पिताजी का अगर उदरी रोग प्राप्त हो गए तो ये परंपरा धारा से उदरी रोग मेरा परिवार में भी आ सकते हैं। तब उनका मन में शंका आ गए। इस शंका के कारण उन्होंने इंद्र का सलाह ले लिए और इंद्र ने उनको सलाह दी कि आप थोड़ा दिन अभी इधर रुक जाओ, वन में आप रहो, रहकर थोड़ा दिन बाद आप जाओ। तब बहुत 6 साल अतिक्रम होने के बाद, जिसके लिए वर्णन किया है कि षष्ठ शतवत् सरह तत्व, जो वन में जाकर रोहित ने 6 साल तक अपना जीवन को बिताया। बाद में उन्होंने गांव में आया, अपना राज दरबार में पहुंच गए थे और बड़ा धूमधाम से यज्ञ किए और उसी यज्ञ में वरुण संतुष्ट होकर राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दे दिए और जिस आशीर्वाद के द्वारा उस उदूरी रोग को निकल गए उनका शरीर से। स्वर्ग लाभ किए थे उन्होंने। तो कोई अपराध का कारण इस तरीका से होता है। श्री भोपाल जी वर्णन कर रहे कि हमारा आचार्य भी कभी कभी गलती के कारण कुछ अपराध हो जाता है उनको। श्री भोपाल जी इसके ऊपर वर्णन किए कि लोचनदास ठाकुर इतना बड़ा महान आचार्य, इतने सारे भजन उन्होंने लिख दिए थे, अपना परम प्रिय गुरु नरहरि सरकार ठाकुर के आशीर्वाद से उन्होंने चैतन्य मंगल ग्रंथ रचना की थी। अपना आत्मचरित में लोचनदास ठाकुर वर्णन कर रहे कि मेरा कोई भी शक्ति नहीं था ये चैतन्य मंगल रचना करने का, लेकिन अपना परम प्रिय गुरु को आशीर्वाद से मैंने ये चैतन्य मंगल ग्रंथ को मैंने रचना की। किस तरीका से उन्होंने रचना की थी इस चैतन्य मंगल ग्रंथ को? उनका गृह का अंदर एक बहुत ही सुंदर एक पेड़ था, पेड़ का नीचे एक शिला खंड में ऊपर बैठकर, मतलब एक जैसा बोलते हैं कि ब्रिक ईट, ईट का ऊपर बैठकर लोचनदास ठाकुर ने ये चैतन्य मंगल ग्रंथ को रचना की थी। उसमें उन्होंने वर्णन की कि मैंने जब इस चैतन्य मंगल ग्रंथ रचना कर रहे थे, अपना गुरु के आशीर्वाद के द्वारा मैंने इस ग्रंथ को रचना कर पाया, लेकिन इस रचना हो जाने के बाद अपना गुरु नरहरि सरकार ठाकुर को मैंने जब इस चैतन्य मंगल ग्रंथ को मैंने अर्पित की, अपना गुरु मेरे ऊपर संतुष्ट नहीं हुए, मैंने साफ प्राप्त कर ली थी उसके द्वारा। मैंने सोच लिया था कि मैंने इतना मेहनत करके ये चैतन्य मंगल का रचना की, मतलब चैतन्य महाप्रभु का आत्मजीवनी को मैंने रचना कर दी, अपना गुरु का आशीर्वाद के द्वारा मैंने रचना की थी। रचना हो जाने के बाद उसी पुस्तक उसी ग्रंथ को जाकर अपना गुरु का चरण में समर्पित कर दिए। लेकिन शास्त्र में वर्णन किए कि गुरु का चरण में समर्पित होने के बाद भी गुरु ने संतुष्ट नहीं हुए। लोचनदास ठाकुर एकदम दुखी बन गए थे सुनकर जब मैंने अपना गुरु के आशीर्वाद से मैंने ये रचना की है चैतन्य मंगल ग्रंथ, जिस ग्रंथ में चैतन्य भागवत में बहुत सारे लीला का वर्णन जो कि वृंदावन दास ठाकुर रचना नहीं किए, जो गुरु तत्व का ऊपर मैंने इस चैतन्य मंगल को रचना कर दी। जैसे कि महाप्रभु का सन्नास होने का पहले महाप्रभु और विष्णुप्रिया देवी का जो अंतिम कथोपकथन, जो भी कोई भी ग्रंथ में इसका वर्णन नहीं है, सिर्फ इसका वर्णन चैतन्य मंगल ग्रंथ में लोचनदास ठाकुर की थी। लोचनदास ठाकुर वर्णन करें, मैंने अपना क्रेडिट नहीं है इसमें, अपना गुरु के द्वारा मैंने इसका वर्णन किया। और इस चैतन्य मंगल ग्रंथ में मुखबंध जिसको बोलते इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में लोचनदास ठाकुर अपना गुरु को महाप्रभु का एक अंतरंग प्रिय पार्षद रूप से बचना की। तो ये जब अपना गुरु नरहरि सरकार ठाकुर ये पढ़ लिए तो बड़ा दुखी हो गए थे अपना गुरु, कहने लगे कि मैंने आपने स्वीकार किए कि मेरा आशीर्वाद के द्वारा आपने ये चैतन्य मंगल ग्रंथ का आपने रचना की हो। आज इस कहानी कहने का मतलब यही है कि आज का जो दिन है परम पवित्र तिथि, जिस तिथि में लोचनदास ठाकुर इस चैतन्य मंगल ग्रंथ रचना चालू की थी। ये किताब में मैंने पढ़ रहा था सुबह, जिसमें लिखा है कि आज का ये परम पवित्र तिथि में लोचनदास ठाकुर ये चैतन्य मंगल ग्रंथ को रचना चालू की थी। तो लोचनदास ठाकुर इस चैतन्य मंगल ग्रंथ रचना करने के बाद जब अपना गुरु के हाथ में इसको समर्पित कर दी तो अपना गुरु ने इसके ऊपर संतुष्ट नहीं हुए, कहने लगे कि आपको मैंने जो शिक्षा दिलाए, जो शिक्षा मेरे से प्राप्त की हो, उसी शिक्षा का बराबर रचना नहीं कर पाए। तो लोचनदास ठाकुर एकदम शॉक हो गए सुनकर कहने लगे मैंने इतना मेहनत करके मैंने लिखा है ये ग्रंथ को। तो लोचनदास ठाकुर पूछने लगे मेरा तो कोई क्षमता नहीं है आपको पूछने का, फिर भी मैं दुखी होकर मैं आपको पूछ रहा हूं, मेरा गलती क्या है, मैंने इस ग्रंथ में क्या गड़बड़ लिखा हुआ आप जरा मेरे को बताइए। तब नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर कहने लगे अचिरात कृष्ण तुम्हारे कोड़ीबे न उद्धार, ये शब्द को ये सेंटेंस को सुनकर भोपाल जी वर्णन कर रहे इसके ऊपर ये लोचनदास ठाकुर वह सरप्राइज, उन्होंने एकदम स्तंभित हो गए सुनकर जे मैंने तो लिखा हूं लेकिन फिर भी अपना गुरु गुरु महाराज का हाथ में जब मैंने अर्पित किया हूं फिर भी उन्होंने कहने लगे अचिरात कृष्ण तुम्हारे कोड़ी बेना उद्धार, बोलते एक दिन जरूर आपको आ जाएंगे जिस दिन आपको कृष्ण उद्धार कर सकते हैं, मैं नहीं, फिर भी अपना गुरु महाराज कुछ भी नहीं बताया उनको जो आपने गलत क्या लिखे हो इसमें, ऐसे करके जीवन बिता रहा है लोचनदास ठाकुर, जीवन में कुछ भी शांति नहीं मिल रहा इसके ऊपर, हर समय उन्होंने पूछने लगे, जब भी उन्होंने पूछना चालू किए उनका गुरु नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन कर रहे अचिरात कृष्ण तुम्हारे कोड़ीबे न उद्धार। पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, इस बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है घूसकड़ा, घूसकड़ा में एक जगह है घूसकड़ा स्टेशन के सामने जिस गांव का नाम है कादाकोड़ा, इस कादाकोड़ा गांव में आज भी लोचनदास ठाकुर का अपना हस्त में लिखित जो अपने हाथ में लिखित हुए वही चैतन्य मंगल ग्रंथ आज भी पड़े हुए हैं। एक छोटा गांव है कादाकोड़ा जिसके अंदर एक छोटा मंदिर है राधा मदन मोहन, जिस राधा मदन मोहन मंदिर में लोचनदास ठाकुर का परिवार उनका परंपरा धारा में एक परिवार है जिसका नाम है प्राण कृष्ण चक्रवर्ती, प्राण कृष्ण चक्रवर्ती का घर में आज भी उस ग्रंथ वर्तमान है जो लोचनदास ठाकुर अपना हाथ में रचना की थी चैतन्य मंगल ग्रंथ। लोचनदास ठाकुर दुखी हो गए कि मैंने जो मेहनत करके मैंने लिखा हूं अपना गुरु अगर संतुष्ट नहीं है तो किताब का कुछ वैल्यू नहीं रहते हैं। प्रभुपाद जी इसको वर्णन कर रहे हैं कि लोचनदास ठाकुर दिन रात भर रोना चालू कर दिए थे फिर भी कुछ सलाह नहीं मिले उनको। अंतिम में एक दिन लोचनदास ठाकुर गोभीर रात में जब सो गए थे रात भर उनको नींद नहीं हो रहा है, खाना पीना उन्होंने सब कुछ बंद कर दिए थे, तो रात को जब गोभीर रात हो गए तब उन्होंने देखा कि गुरुजी ने जो बताया अचिरात कृष्ण तुम्हारे कोड़ीबे न उद्धार, स्वयं भगवान उनका सामने प्रकटित होकर कहने लगे आपने जो ग्रंथ को रचना की हो उसमें नितायिका ऊपर कुछ भी आपका वर्णन नहीं किया हो, इसके लिए शास्त्र में कहते हैं कि नीताय कोरोना होइले ब्रोजे राधा कृष्ण पावे। तब लोचनदास ठाकुर सोचने लगे कि मैंने जो ग्रंथ को मैंने रचना किया हूं इसके ऊपर सही मैंने कुछ वर्णन नहीं किया था नीताय का ऊपर। तब गंगा का तट में बैठकर नित्यानंद प्रभु का गुणों कीर्तन के द्वारा तीन भजन उन्होंने लिखे हैं, इसका बहुत सुंदर एक पयार छंद में चेतन मंगल ग्रंथ में पयार छंद में इसका वर्णन है कि जब उन्होंने सुन लिया कि अरे मैंने तो इतना दिन तक वह सोच भी नहीं पाए जब ग्रंथ को मैंने रचना किया हूं इसके ऊपर निताये का कोई भी गुणों कीर्तन मैंने नहीं किया। देखिए किस तरीके से उनका अपराध हो गए थे, नितायर कोरोना होइले ब्रजे राधा कृष्ण पावे, गुरु ने बताए कि अचिरात कृष्ण तुम्हारे कोड़ीबे न उद्धार, मैं आपको उद्धार नहीं कर सकता हूं स्वयं भगवान आकर आपको उद्धार कर देंगे। जीवन बीत गए उनको बहुत साल तक इसी तरीके से बीत गए थे, जीवन का जब अंतिम मुहूर्त उपस्थित हो गए उनका सामने, तब भगवान आकर उनको सलाह दिए कि आपने जिस तरीके से लिखे हो उसके अंदर निताई का कुछ भी गुणों कीर्तन आपने नहीं किए। निताई रो करुणा होइले ब्रोजे राधा कृष्ण भाव। तब लोचनदास ठाकुर जाकर तीन भजन लिखे निताई का ऊपर, निताई गुण मुनि आमार, निताई गुण मुनि पहला भजन, दूसरा भजन है अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय दूसरा भजन, आ तीसरा भजन परम करुणा पहु दुई जन निताई गौड़ चंद्र। ये तीन भजन निताई का गुणों कीर्तन के ऊपर उन्होंने वर्णन किए थे। तब जाकर फिर उन्हें अपना गुरु को सामने अर्पित कर दिए। गुरु ने कहा कि आपने आपने सही तरीका से लिखे हो, जिस भावना से आपने ये ग्रंथ को रचना की थी इस भावना को अभी आप प्रकटित कर सकते हो। लोचनदास ठाकुर इसमें वर्णन करे कि बचपन में लोचनदास ठाकुर का शादी विवाह हो गए थे। उसी जमाने में ऐसा विधि था कि एकदम बचपन में शादी विवाह होता था। अगर लड़की का 5 साल उम्र है तो शादी विवाह करने के बाद लड़की अपना पिताजी के घर में चले जाते थे। तो लोचनदास ठाकुर का बहुत कम उम्र में शादी हो गए थे। शादी होने के बाद अपना धर्मपत्नी पिताजी के घर में पहुंच गए। लोचनदास ठाकुर का जीवन में पूरा वैराग्य आ गए। कोई की कोई संसार के ऊपर कोई भी चीज के ऊपर कोई आसक्ति नहीं। कृष्ण तोड़े कड़े तहो कड़ो सुनमी पौन, सिर्फ भगवान के ऊपर उनका आसक्ति है और सब कुछ उन्होंने छोड़ दिए थे। तो उनका पत्नी का परिवार सोचने लगे, अरे अपना बिटिया के साथ इनका शादी हो गई लेकिन ये तो अभी ऐसा वैराग्य आ गए कि संसार के ऊपर इनका कुछ भी आसक्ति नहीं है। तो परिवार बगड़े पहुंच गया लोचनदास ठाकुर का गुरु नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर का सामने। तो नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर का सामने जब पहुंच गए उन्हें कहने लगे कि देखो इन्हें लोचनदास के साथ हमारा बेटी का शादी हुए लेकिन अभी तो उनका संसार के ऊपर कुछ भी आसक्ति नहीं है। पूर्ण वैराग्य देव कहे स्मरण तब अपना गुरु का कर्तव्य होता है शिष्य को सही पथ में रखने का। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। तो अपना गुरु ये सुनकर लोचनदास ठाकुर कहने लगे कि आप जाओ, आपने शादी विवाह किए थे, आपका कर्तव्य होता है आपका धर्म पत्नी को देखभाल करने का। कि गुरु का बात तो अवज्ञा नहीं कर सकते है। गुरु रो अवज्ञा श्रुति शास्त्र निंदनम तथार्थवाद हरिनाम निकल्पनम। गुरु का बात को अवज्ञा करना शास्त्र का विरोधी होता है। अगर गुरु का बात को कोई अवज्ञा किए ढीसवे किए मतलब तो मतलब शास्त्र को उन्होंने स्वीकार नहीं किए। तो लोचनदास ठाकुर गुरु का बात सुनकर ससुराल के घर में जाने लगे। बचपन में उन्होंने छोड़ दिए थे अपना धर्मपत्नी को। ये बहुत सुंदर लीला का वर्णन किया है ग्रंथ में। तो बचपन में उन्होंने छोड़ दिया, उनका घर पता नहीं कि ससुराल का घर कहां पे है। तो अपना गुरु ने बताया कि उसी गांव में है, जाओ आप जाके ढूंढो आपका ससुराल घर कहां है, आपका धर्मपत्नी कहां पे है, जाओ जाके मिलो, मिलकर लेकर आओ, साथ में संसार बनाओ अच्छे तरीके से, देखो देखभाल करो। तो गुरु का बात उन्होंने सुन ली। लोचनदास ठाकुर पहुंच गए थे गांव गांव ढूंढते ढूंढते लेकिन उनको पता नहीं है घर कौन सा है। ऐसा करके करके ढूंढना चालू कर दिए और एक युवती उनके सामने पहुंच गए, एक यंग लड़की। तो यंग लड़की को माता बोलकर संबंध करके उन्होंने पूछने लगे कि ये घर कहां पे है। देखिए माता बोलकर संबोधन किए, माता बोलकर रिस्पेक्ट किए उन्होंने। तो जिनको उन्होंने पूछे जब उन्होंने बताया कि ये घर में जाओ, इसी 2 घर 3 घर छोड़ के उनका घर है। तो लोचनदास ठाकुर अपना ससुराल में पहुंच गए। उसी तरीका से पहुंचने के बाद जाकर देखा कि जिस लड़की को उन्होंने माता संबोधन करके पूछ लिए वही उनका धर्मपत्नी है। तब से लोचनदास ठाकुर अपना धर्मपत्नी को माता बोलकर ही सम्मान करते थे। रूपा जी एक बंगाली लेक्चर में इसके ऊपर वर्णन कर रहे कि मेरा जीवन में ऐसा एक सरप्राइज हो गए थे। इस लोचनदास ठाकुर का ये जीवनी प्रभुपाद जी एक बंगाली लेक्चर में किए कि मैंने एक बार अमेरिका में जाकर न्यूयॉर्क में मैंने इस लोचनदास ठाकुर का वर्णन करना चालू कर दी। और मैं इसी तरीके से कहा कि लोचनदास ठाकुर यंग लड़की को मिल गए, उनको माता संबोधित किए, बाद में जाकर देखा कि वही लड़की मेरा धर्म पत्नी है। तब से लोचनदास ठाकुर जिंदगी में कभी भी अपना धर्म पत्नी को तू बोलकर संबंध नहीं किए, माता बोलकर संबंधित किए थे। तो प्रभुपाद जी इस लीला को अमेरिका में जाकर वोस्टन में पहला लेक्चर में प्रभुपाद जी ने वर्णन कर दिया। उसी समय ज्यादा कोई भक्त वगैरह नहीं थे, तो दो चार गृहस्थ भक्त आए। तो प्रभुपाद जी ने जब इसी तरीके से वर्णन किए, एक गृहस्थ परिवार सुन रहे थे। तो सुनने के बाद और गृहस्थ परिवार घर में गए और अपना धर्म पत्नी को माता बोलना चालू कर दी। तो जब माता बोलना चालू कर दी तो धर्म पत्नी तो बहुत गुस्सा हो गए, अरे मैं आपका माता कब बन गए हो। तो देखिए गुरु का बात किसी तरीके से सुना। तो प्रभुपाद जी इसको वर्णन कर रहे हैं कि शास्त्रों में जो वर्णन करते हैं कभी कभी वास्तव में उसको यूटिलाइज करना इज टू टफ फॉर द ह्यूमन बींग। तो मैंने इसका लोचनदास ठाकुर का वर्णन कर दी, लेकिन ये को सुनकर वो परिवार में जाकर अपना धर्म पत्नी को जिनके साथ इतना साल तक संबंध है उन्होंने जाके माता कह दी। और उनका धर्म पत्नी वाइफ ने गुस्सा होकर कहने लगे, अरे मैंने कब आपका माता बन गया। तो लोचनदास ठाकुर का जीवन चरित्र ऐसा है। तो उन्होंने चैतन्य मंगल ग्रंथ रचना की थी, पहला मन में उनका कुछ भी विचार नहीं था ये रचना करने का, लेकिन अपना गुरु का निर्देश से उन्होंने ये गौरांग चरित कर रचना कर दी, जिसमें बहुत सारे रचना है, जिसमें कोई भी जैसे कि वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत ग्रंथ में महाप्रभु का अंतिम समय का जो महाप्रभु और विष्णुप्रिया देवी का जो डिस्कस जो कथोपकथनों का ऊपर कभी उन्होंने वर्णन नहीं किए थे। सर लोचनदास ठाकुर इसका वर्णन किए चैतन्य मंगल ग्रंथ में कि विष्णु प्रिया देवी के जब पता हो गई कि महाप्रभु सन्यास ले रहे हैं, तो विष्णु प्रिया देवी कहने लगे, सुनो सुनो प्राणनाथ मोर शिरे दिए हाथ सन्यास लोइबे ना कि तुम्हें। देखिए इसको बोलते पयार छंद। पयार छंद में उन्होंने रचना की पांचाली, जिसको बोलते पांच शब्दों को लेकर, मतलब पांच वर्ड्स को लेकर एक शब्द बनते हैं, पांच अक्षर को लेकर। सुनो सुनो प्राणनाथ मोर शिरे दिए हाथ सन्यास लोइबे ना कि तुम, जो कि कोई भी ग्रंथ में जैसे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको वर्णन नहीं किए, विष्णुप्रिया देवी और महाप्रभु का डिस्कशन का ऊपर से लोचनदास ठाकुर चैतन्य मंगल ग्रंथ में इसका वर्णन किए। सुनो सुनो प्राणनाथ मोर शिरे दिए हाथ सन्यास लोइबे ना कि तुम। तो महाप्रभु इसको रिप्लाई दे रहा है, नाम तोर विष्णु प्रिया सार्थक करो इया। महाप्रभु कहने लगे, जगते जते के देखो मीछा करी सब देखो, जगते जते के देखो मीछा करी सब लेखो सत्य एक सबे भगवान, नाम तोर विष्णु प्रिया सार्थक करो इया। जो कि पयार छंद में रचना की थी इसको। शास्त्र में वर्णन है कि वृंदावन दास ठाकुर जब चैतन्य भागवत रचना की थी उसके पहले इसका नाम था चैतन्य मंगल, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी और लोचनदास ठाकुर दोनों मिलकर इस चैतन्य मंगल को चैतन्य भागवत रूप से रूपायित कर दिए, नामकरण किए उन्होंने। तो आज एक परम पवित्र तिथि है, जिस दिन से मैंने सवेरे एक किताब में पढ़ रहा था, बंगाली किताब, उसमें वर्णन की है भक्तिचंद्र सरस्वती ठाकुर का एक ग्रंथ है भक्ति विनद वाणी वैभव, उसमें इसका वर्णन है कि आज इस परम पवित्र तिथि से लोचनदास ठाकुर इस चैतन्य मंगल ग्रंथ को रचना करना चालू किए थे, जिसके लिए मैंने सोचा कि इस भागवत में इसका ऊपर जो वर्णन है मानधाता का परिवार का ऊपर, जो कि प्रभुपाद जी इसके ऊपर वर्णन की एक जगह में, एक सेंटेंस में इसका वर्णन किए कि मानधाता फैमिली जो है इससे ड्यूअल, जो मैंने पहले बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ड्यूअल, तो ड्यूअल का अर्थ होता है कि मानधाता परिवार जो साधु संत के द्वारा आशीर्वाद भी प्राप्त किए थे और साथ साथ श्राप भी प्राप्त कर चुके थे। जैसे कि राजा हरिश्चंद्र ने साधु संत का आशीर्वाद भी प्राप्त किए, जैसे वरुण देव उनको आशीर्वाद किए थे जिसके द्वारा उनका घर में रोहित आए, साथ साथ जब उन्होंने वचन को पूरा नहीं कर पाए तो रोहित के वरुण देव के द्वारा श्राप होकर उनको क्या हो गए थे, उदर रोग प्राप्त हो गए। जिसके लिए प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि मंदत्ता फैमिली बैकग्राउंड वॉज ए ड्यूअल, मतलब दो तरीके से हुए, साधु संत के द्वारा आशीर्वाद भी प्राप्त किए और साथ साथ श्राप भी ले लिए। तो राजा हरिश्चंद्र का चरित्र इसी तरीके से वर्णन है कि उन्होंने एक तरीके से साधु संत का आशीर्वाद प्राप्त किया जिसके द्वारा उनका घर में आ गए थे रोहित, जो कि कभी वो सोचा भी नहीं था। और श्राप कैसे प्राप्त किए, जब उन्होंने वचन दिए थे कि मेरा पुत्र हो जाने के बाद मैंने बड़ा धूमधाम से अपना पुत्र को मैं यज्ञ में अर्पित कर दूंगा, लेकिन पुत्र के ऊपर आसक्ति का कारण उन्होंने अर्पित नहीं कर पाए, तब वरुण देव ने क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिए और उनको उदर रोग प्राप्त हो गए। जो उदरी बीमारी पकड़ लिए तब अपना बेटा रोहित बड़ा हो गए। उन्होंने सोचने लगे कि अरे ये जो उदरी रोग जो है ये है बाय हेरिडिटिकल, मतलब वंश परंपरा धारा से आते हैं। तब रोहित ने सोचने लगे कि मेरा पिताजी जो वचन दिए थे उसे वचन को निभाने का काम मेरा कर्तव्य होता है। तब उन्होंने दूसरे जगह से एक पुत्र को खरीद करके इसी यज्ञ में अर्पित कर दिए। आज देवता लोग खुश होकर राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिए और साथ साथ स्वर्ग से एकदम सोने का रथ आ गए राजा हरिश्चंद्र को लेने के लिए। तो राजा हरिश्चंद्र स्वर्ग प्राप्ति हुए थे। तो इस जो अध्याय चल रहा है इसके ऊपर से दो तीन श्लोक का ऊपर श्री प्रभुपाद ने तात्पर्य में विश्लेषण किए और दूसरा कुछ भी नहीं है। इसका आगे चलते जो श्लोक है इसके ऊपर भी कुछ तात्पर्य नहीं है। तो इसके लिए मैं आज सोचा था कि आज एक परम पवित्र तिथि है जिस दिन में हमारा परंपरा धारा में लोचनदास ठाकुर वर्णन की है चैतन्य मंगल ग्रंथ का, इसके ऊपर मैंने प्रयास किए थे वर्णन करने के लिए। श्री प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि महाप्रभु का आशीर्वाद अगर किसी को प्राप्त करना है, गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध कोड़ी माने से जाए ब्रजेंद्र सुत पार्ष, क्योंकि महाप्रभु का जो पार्षद होता है सब नित्य सिद्ध होता है। गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध कोड़ी माने, जो कि पार्षद बिंदु होता है उसको जो अगर स्वीकार कर लिए कि ये नित्य सिद्ध है तो स्वयं भगवान अपना धाम में उसको बुला लेते हैं। गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रजेंद्र सुत पार्ष, इसके लिए पार्षद का लीला को श्रवण करना सबसे जरूरी होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गंतराज मद भागवतम की जय। लचनदास ठाकुर की जय। गौर प्रेमानंदे पंचाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।